تین کا ایک باپ ایک جنا ایک ہزار رکعت نفل نماز کا ثواب ملتا ہے. جس جگہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہو وہ آسمان والوں کے لیے نور کی طرح چمکتے ہیں. جو لوگ صرف اللہ کے لیے ملے اور واپس گئے, کوئی دنیاوی غرض نہیں تھی, ایسے لوگ عرش کے سائے میں ہوں گے, نور کے ممبروں پر ہوں گے. اللہ پاک ہمارا آپ کا حشر اس طرح فرما دے اور ہمیں یہ ساری برکات فضائل عطا فرمائے. آمین. حلق تعلیم میں بیٹھنے کی نیت یہ ہو کہ اللہ پاک ہم سے آپ سے ساری امت سے راضی ہو جائے, سب لوگ اللہ کے اولیاء بن جائیں, سب کی توبہ قبول ہو جائے, شیطان اور نفس کے بہکانے سے بچ جائیں, اور گناہ اور نافرمانی دور ہو جائے, غفلت کاہلی سستی دور ہو جائے, اچھی باتیں اچھی دعائیں اچھا ذکر یہ ہماری زبان پر جاری ہو جائے سانس کی طرح, کوئی کوشش نہ کرنی پڑے, دین کے سارے احکام ہمارے اندر آ جائیں کسی بغیر دلیل کے آ جائیں, کوئی دلیل بحث مباحثہ ڈیبیٹ اس کی ضرورت نہ پڑے, بلکہ جو اللہ کو پسند ہے وہ مجھے بھی پسند ہے, بس اس پر عمل کرنا, ہماری زندگی صراط مستقیم پر آ جائے, ہمارا نفس نفس مطمئنہ ہو جائے, نیکی پھیلانے کا جذبہ ہمارے اندر آ جائے, امت کی خیر خواہی آ جائے, ہماری دنیا کی زندگی حیات طیبہ میں بدل جائے, پاکیزہ زندگی اس کی پہچان ہے, صحت سلامتی امن چین عمدہ رزق آسان آمدنی دعاؤں کی قبولیت, اور آخرت میں آسان حساب ہو, مغفرت جنت الفردوس میں درجات. یہ ساری نیتیں کر کے ہم بیٹھیں کہ یا اللہ ہم کمزور ہیں, ہمارے پاس وقت بھی کم ہے, ہمیں آتا بھی نہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کریم ہے, اللہ عطا فرمانے والے اور اللہ کے دربار میں سے سب کو ملتا ہے. تو اس کے لیے جو چیز چاہیے وہ ہے شوق, شوق جذبہ ولولہ, بے دلی سے پریشانی سے پتہ نہیں کیا ہے ڈبل مائنڈیڈ ایسا نہ بیٹھے, بلکہ بہت شوق سے بیٹھے کہ بس مجھ کو یہی وقت ملا تھا, اللہ پاک ایسی کوئی بات کہلوا دیں. ہوتا یہ ہے کہ مجلس میں جو لوگ سن رہے ہوتے ہیں کہاں کہاں اللہ کے ولی چھپے ہوئے ہیں, ان کی برکت سے اللہ پاک کوئی ایسا مضمون کوئی ایسی چیز کہلوا دیتے ہیں جس سے سب کا بھلا ہو جاتا ہے. ذرا جب دعا ہوتی ہے تو کون اللہ کا ولی ہے, ان کی برکت سے سارے مجمعے کی دعا قبول, تو اس لیے ہم بیٹھے. بہت بڑے مشائق میں بزرگ فرماتے تھے کہ ہماری مجلس میں جتنے لوگ آتے ہیں ہم ان سب کو ذریعہ نجات سمجھتے ہیں, وہ کس کی وجہ سے ہماری نجات ہو جائے ایسا سمجھتے ہیں. تو بہت اعتقاد اور طلب اور توجہ اور شوق سے بات سنی, بس اتنی سی درخواست. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت بڑے ہیں اور اللہ کے خزانے بہت بڑے ہیں. آسمان کے چپے چپے پہ اللہ پاک کی عبادت ہوتی ہے, ہر جگہ اتنے فرشتے, کوئی قیام میں ہے کوئی کھڑا ہے, سال ہر سال سے سینکڑوں سال سے کھڑے ہو کے عبادت کر رہے ہیں, کوئی جو ہے سینکڑوں سال سے چکے ہوئے ہیں رکوع میں, کوئی جو ہے وہ سینکڑوں سال سے سجدے میں پڑے ہوئے ہیں. ہماری نماز جو ہے ان سب عبادتوں کا مجموعہ ایک پانچ منٹ کا کہ آپ یہ نماز پڑھ لیجیے. بیت اللہ کے اوپر بیت المعمور ہے آسمان میں, فرشتوں کا قبلہ, وہاں فرشتے طواف کرتے ہیں. ایک فرشتہ جب ایک مرتبہ وہاں عبادت کر لے تو قیامت تک اس کی دوبارہ باری نہیں آتی, اتنے فرشتے اللہ کی عبادت میں لگے. اللہ پاک بہت بڑے ہیں اور اللہ کے انعامات پہ ہم غور کریں, بار بار یاد دہانی کی جاتی ہے, پانی کا ایک گلاس ہم تک آنے میں کتنی کائنات کی قوتیں ہمارے کام میں لگی ہوئی ہیں, سمندر کا پانی اور ہوا اور بادل اور بارش اور پہاڑوں کا نظام, نہروں کا نظام, برف کا, اس کے پگھلنے کا, سورج کا نظام. پانی اگر زیادہ پگھل جائے تو سیلاب آ جائے گا, اور اگر کم پگھلے اور بارش نہ ہو تو قحط پڑ جائے. اللہ پاک کا ایک نظام ہے, ہر ایک کو روزی پہنچاتے ہیں. ہر سال جو ہے زمین بنجر ہو جاتی ہے سیاہ, اور پہاڑ خشک, اور پھر بارش ہوتی ہے, پھر دیکھو لہلہاتا ہوا پھر جو ہے سبزہ. ہر سال اللہ پاک دکھاتے ہیں, بار بار دکھاتے ہیں بھائی یہ کون کر رہا ہے. اگر ہوا تیز چل جائے تو ایسی آندھی آئے کہ لوگ پریشان ہو جائیں. اللہ پاک دکھاتے ہیں کہ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ کسی کے قابو میں نہیں ہیں, اللہ پاک سیدھا سادہ ایک نظام ہے. اللہ کی بڑائی ہم بیان کریں صبح شام, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت اللہ کی محبت ہمارے دل میں آئے. صبح شام کے لیے کچھ معمولات بیان کیے جاتے ہیں جو مصروف حضرات ہیں اور ان کو زیادہ وقت نہیں ملتا, اور آج کل جو ہے ہم سب کمزور ہیں, तो 5 मिनट अगर कोई दे तो क्या जिक्र करे, अल्लाह की क्या बड़ाई बयान करे, क्या दरूद शरीफ पढ़े, क्या इस्तिग़फ़ार पढ़े। तो उसके लिए कुछ चीज़ें हम लोग बार बार पढ़ते हैं, जो उसको कोई लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं, और वो किताबें हैं किसी के पास दुआओं की, तो किताबों में भी मिल जाएगा। तो अल्लाह पाक की बड़ाई बयान करने के लिए कुछ कलिमात बार बार पढ़े जाएँ सुबह शाम। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही अदद खल्क़िही मिदाद कलिमातिही रिबा नफ्सिही वज़िनत अर्शिही। سبحان الله وبحمده عدد خلقه مداد كلماته رضا نفسه وزنة عرشه سبحان الله وبحمده عدد خلقه رضا نفسه وزنة عرشه مداد كلماته। استغفار کی اگر 3 مرتبہ آدمی پڑھ لے، استغفر الله ربی من كل ذنب واتوب الیہ، استغفر الله ربی من كل ذنب واتوب الیہ، استغفر الله ربی من كل ذنب واتوب الیہ، कितने कितने जो है समुंदर के झाग के बराबर सगीरा गुनाह गलतियाँ माफ़ हो जाती हैं। एक इस्तिग़फ़ार पूरी उम्मत के लिए किया जाए, अल्लाहुम्मा अग़फिर लिल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात। इसको पढ़ने से दुनिया में जितने मुसलमान मोमिनीन मोमिनात हैं उनकी तादाद के बराबर सवाब लिखा जाता है, 1 अरब 1 बिलियन के करीब सवाब लिखा जाता है। अब ये ज़बान की छोटी सी हरकत है, इतना बड़ा सवाब लिखा जा रहा है। एक दरूद शरीफ है, जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा अहलु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जज़ल्लाहु तआला अन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हुवा अहलु। उसको इतना सवाब है कि 70 फरिश्ते 1000 दिन तक उसका सवाब लिखते रहते हैं, सिर्फ इस बात का सवाब लिखते रहते हैं। हिफाजत की दुआएँ पढ़ी जाएँ और उनको बच्चों को भी सिखाया जाए। हदीस शरीफ में आई है, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस्समा वहुवा समीउल अलीम, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस्समा वहुवा समीउल अलीम, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस्समा वहुवा समीउल अलीम। इन सहाबी ने ये रिवायत बयान की तो उनको कोई तकलीफ़ हो गई थी, किसी ने पूछा कि आप दुआ बता रहे हैं आपको तकलीफ भी हो गई, वो फरमाने लगे कि बस उस दिन पढ़ना भूल गया था। जो आदमी बीमार है तकलीफ है किसी को, तो आयत करीमा पढ़नी चाहिए, ला इलाहा इल्ला अंता सुभानका इन्नी कुंतु मिनल ज़ालिमीन, ला इलाहा इल्ला अंता सुभानका इन्नी कुंतु मिनल ज़ालिमीन। सुबह शाम चंद मरतबा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ ले आदमी 7 मरतबा, इसमें 1 मिनट भी नहीं लगता, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, और ये सबको मालूम भी है। ये अर्श क्या एक ख़जाना है, और इससे आदमी का गम और डिप्रेशन दूर होता है, बहुत फ़ायदे हैं। सुबह शाम अगर 7 मरतबा पढ़ लिया जाए सूरह तौबा की आखिरी आयत का आखिरी टुकड़ा, हसबी अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम, हसबी अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। तो दिन के बड़े बड़े काम, मुश्किल काम आसान हो जाते हैं। आजकल लोग कमज़ोर हैं, परेशान रहते हैं, ऐसा हो गया, मुश्किल हो गई, तो ये तस्बीहात और ये मामूलात नहीं छोड़ने चाहिए। इनमें 2-4 मिनट ही लगते हैं, ये कागज़ पर लिख लें, डायरी में लिख लें। 70,000 फरिश्तों की दुआ, सूरह हशर की आखिर की आयात जो पढ़ लेंगे जिसमें अल्लाह के नाम है अस्माउल हुस्ना, और उससे पहले 3 मरतबा पढ़ लें बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस्समा वहुवा समीउल अलीम, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم। सूरह हशर की आखिर की आयात है, कुरान पाक में मिल जाएंगी। तो इनको पढ़ने से 70,000 फरिश्ते सुबह से शाम तक दुआ करते रहते। एक बुज़ुर्ग फरमाते थे कि मैं सुबह उठकर पहले 70,000 फरिश्तों को दुआ करने की ड्यूटी पर लगाता हूँ, फिर नाश्ता करता हूँ। अब ये चीज़ें हमने पढ़ी में 5-7 मिनट लगे, कहीं लिख लिए मस्जिद में बैठे हुए, घर में बैठे हुए, मसल्ले में, सुबह शाम पढ़ ली जाए। ये ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو نیک اولاد اپنے والدین پر شفقت اور محبت سے نظر ڈالے تو اللہ تعالی ہر نظر کے بدلے ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ والدین کا مقام، ماں باپ کا اتنا بڑا مقام ہے کہ بس ایک نظر ان کے اوپر ڈالنے سے ایک حج کا، یعنی نفلی حج کا، عمرے کا ثواب مل جاتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی شخص روزانہ 100 مرتبہ ان پر نظر ڈالے، صحابہ جو ہے وہ ثواب کے حریص تھے، انہوں نے کہا 100 مرتبہ نظر ڈالے، جب ہر نظر پر اس کو یہ ثواب عظیم ملے گا یا نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اور یہ بھی فرمایا کہ اللہ پاک کی ذات ہمارے وہم و گمان سے اونچی ہے، نہایت عظیم ہے، بہت پاکیزہ ہے، ہر عیب سے پاک ہے۔ یعنی ہر نظر پہ یہ ثواب عظیم دینا ان کے لیے کچھ مشکل نہیں۔ یہ لکھتے ہیں مفتی عبدالرؤف زکریا صاحب، دامت برکات ہوں، کہ اگر آپ کے ماں باپ دونوں میں سے یا کوئی ایک زندہ ہے تو آپ بڑے خوش نصیب ہیں، دل و جان سے ان کی خدمت کریں، ان سے دلی دعائیں حاصل کریں، ان پر شفقت اور احترام کی، ہر نظر پر ایک حج کا ثواب حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ ماں کی دعا جنت کی ہوا، اور باپ کی دعا قبول ہوتی بچے کے لیے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت۔ جو لوگ بڑی عمر کو پہنچ گئے اور کمزوری ہے یا بیمار ہیں، بڑی بڑی تسبیحات اور بہت ساری چیزیں نہیں بیٹھ پڑھ سکتے، بستر پہ لیٹے ہیں یا کرسی میں بیٹھے ہیں، تو ان کے لیے بھی تھوڑی سی تسبیح پڑھنے پر بہت زیادہ ثواب ہے۔ بیماری میں ویسے ہی جو ہے صحت کے زمانے میں پچھلے ریکارڈ کے حساب سے وہ ثواب پرانا تو لکھا ہی جاتا، اس لیے جب صحت ہے تو خوب عمل کر لے آدمی اپنے آپ کو بہت، کہ مجھے روزانہ 1 بلین کی آمدنی ہوا کرتی تھی، آخرت کسی دن نہیں ہوئی، بیمار ہو گئے تو وہ ویسے ہی ملے گا۔ سبحان اللہ، جو شخص صبح شام 100 مرتبہ کہے سبحان اللہ، تو ایسا ہے جس جیسے اس نے 100 نفلی حج کیے۔ الحمدللہ، جو صبح شام 100 مرتبہ کہے، تو ایسا ہے کہ اس نے 100 مرتبہ گھوڑوں پر اللہ کی راستے میں لوگوں کو سوار کیا، یعنی اللہ کے راستے میں 100 گھوڑے دیے۔ لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ صبح شام جو پڑھ لے، تو ایسا ہے کہ اس نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے 100 غلام آزاد کیے۔ اللہ اکبر 100 مرتبہ جو کہہ لے، اس دن کوئی اور شخص افضل نہ ہوگا سوائے اس شخص کے جس نے یہ کلمات اتنی بار یا اس سے زیادہ کہے ہوں۔ چھوٹی چھوٹی نیکیوں کے پہاڑ مل رہے ہیں۔ اب آدمی کو چاہیے کہ اپنی زبان کی حفاظت کرے اور زیادہ سے زیادہ جو ہو سکے اللہ کا ذکر کرے۔ شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ فضائل درود میں حضرت نے لکھا ہے ایک رسالہ، اس کا ایک حصہ ابھی ہم پڑھیں گے۔ درود شریف کے فائدے: قیامت کے دن عرش کے سائے میں داخل ہونا، حوض کوثر پر حاضری نصیب ہونا، قیامت کے دن کی پیاس سے امن نصیب ہونا، جہنم کی آگ سے خلاصی، پل صراط پر سہولت سے پار ہونا، مرنے سے پہلے اپنا ٹھکانہ جنت میں دیکھ لینا، اور درود شریف صدقے کے قائم مقام ہے، اس کی وجہ سے مال میں برکت ہوتی ہے، 100 حاجتیں بلکہ اس سے بھی زیادہ پوری ہوتی ہیں، اعمال میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے، مجالس کی زینت ہے، فقر اور تنگی معیشت کو دور کرتا ہے۔ درود پڑھنے والا قیامت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب ہوگا۔ درود شریف کی برکت سے بیٹے اور پوتے یعنی اگلی نسل تک کو نفع ہوتا ہے، وہ بے شک نور ہے، دشمنوں پر غلبہ حاصل ہونے کا ذریعہ ہے، دلوں کو نفاق سے اور زنگ سے پاک کرتا ہے، لوگوں کے دلوں میں محبت کا ذریعہ ہے، خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا ذریعہ ہے۔ درود پڑھنے والا اس سے محفوظ رہتا ہے کہ لوگ اس کی غیبت کریں۔ درود پاک دین اور دنیا دونوں میں بہت نفع دینے والا عمل ہے، ایسی تجارت جس میں نقصان نہیں، اولیاء کرام کا صبح و شام کا مستقل معمول ہے، خوشی حاصل کرنے کا وسیلہ ہے، بہترین عطاؤں کا۔ بس جہاں تک ہو سکے درود شریف پر جمے رہیے کہ اس سے ہم اپنی گمراہی سے نکل آئیں گے اور اعمال صاف ستھرے ہو جائیں گے، دل منور ہو جائے گا اور قیامت کی دہشت سے امن نصیب ہوگا۔ جمعے کے دن خاص طور سے درود شریف کی کثرت کرنی چاہیے۔ ज़्यादा से ज़्यादा जुमेरात की रात से आदमी शुरू हो जाए कि दरूद शरीफ पढ़ना है आज, दो दरूद शरीफ पढ़े जाएंगे आज। एक दरूद शरीफ है जिसके पढ़ने वाले के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफ़ात वाजिब होगी, जिसमें हुस्न खात्मा की बिशारत है, यानी उसका आखिरी वक्त दुनिया से जाना ईमान से होगा। इतनी इतनी ऊँची फजीलत है। اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اے اللہ رحمت نازل فرمائیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ کو ایسی جگہ میں اتاریے جو آپ کی مقرب ہو قیامت کے دن. دوسرا درود شریف ہے، یہ روزی میں برکت کے لیے، اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. یا اللہ رحمت نازل فرمائیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور رحمت بھیجیے مومن مردوں اور عورتوں پر، اور مسلمان مردوں اور عورتوں پر. روایت میں ہے جس آدمی کی خواہش ہو کہ اس کا مال بڑھ جائے تو یہ درود شریف پڑھا کرے، اور جس کے پاس صدقہ دینے کے لیے کوئی چیز نہ ہو وہ یہ درود شریف پڑھا کرے. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. چھوٹے درود شریف بھی ہیں، صلی اللہ علی النبی الامی. درود شریف یہ کتاب، اس طرح ملتی ہیں کتابیں، اور ویب سائٹ پر بھی، جس کو انٹرنیٹ ہے تو ویب سائٹ سے بھی دیکھ سکتے ہیں، اور اگر کسی کو ضرورت ہو جہاں حلقہ ہوتا ہے وہاں رابطہ کر کے وہاں سے بھی منگوا سکتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد. میرے محترم بزرگوں، ہماری مائیں اور بہنیں، آدمی کی زبان سے ہیرے موتی جواہرات لاکھوں کروڑوں کمائے جا سکتے ہیں، دعا، ذکر، تلاوت، درود شریف. اور وہی زبان جو ہے وہ بیکار کنکر مٹی پتھر جمع کر سکتی ہے، ادھر ادھر کی فضولیات، سیاسیات، خبریں اور جو ہے جھگڑے. تو بعض جگہ نہ گناہ نہ ثواب، وقت ضائع ہوتا، لمبی لمبی باتیں ضرورت سے زیادہ. اور وہی زبان پھسل جائے تو آفتیں، مصیبتیں، جھوٹ، غیبت، چغلی، بہتان، مذاق اڑانا، لڑائی جھگڑا، شیخی مارنا، بیہودہ فحش باتیں، زبان کی بہت ساری آفتیں ہیں. پوری پوری کتابیں لکھی گئی ہیں. 100 سال کا آدمی، 100 سال کا غیر مسلمان آدمی زبان سے ایک کلمہ پڑھنے سے اسلام میں آ جاتا ہے، اور اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور 100 سال کا مسلمان نمازی پرہیزگار اگر بعض ایسی کوئی غلط کلمہ کفر کہہ دے تو ساری زندگی کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. زبان بہت سوچ سمجھ کر کہنی چاہیے. بس ہمیشہ وہ بات کہے مستند ہو، پہلے سے کہیں لکھی ہوئی ہو، اور اپنی طرف سے یعنی کوئی نئی چیز اور لڑائی جھگڑا اور اس چیزوں سے بہت زیادہ بچنا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک عمل ہے صلاۃ التسبیح کا، جس سے بہت سارے گناہ معاف ہوتے ہیں، یاد دہانی کے طور پر، کیونکہ یہ رجب کا مبارک مہینہ ہے، پھر شعبان، رمضان کی مبارک راتیں آ رہی ہیں، تو کوشش کر کے کبھی یہ نماز پڑھ لی جائے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنے چچا عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ میں آپ کی خدمت میں ایک گراں قدر عطیہ اور ایک قیمتی تحفہ پیش کروں، کیا میں آپ کو ایک خاص بات بتاؤں؟ تو پھر انہوں نے یہ عمل بتایا کہ جب آپ اس کو کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے سارے گناہ معاف فرما دیں گے، اگلے بھی اور پچھلے بھی، پرانے بھی، نئے بھی، بھول چوک سے ہونے والے بھی، دانستہ بھی، صغیرہ بھی، کبیرہ بھی، ڈھکے چھپے علانیہ بھی. وہ عمل صلاۃ التسبیح ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ 4 رکعت نماز پڑھیں، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ، دوسری کوئی سورہ پڑھیں جب آپ پہلی رکعت میں، اس کے بعد انہوں نے تفصیل بتائی ہے کہ یہ تیسرا کلمہ جو ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ اس نماز میں 300 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، ہر رکعت میں 75 مرتبہ. اور اس کا ایک طریقہ بیان کیا گیا ہے، 2 طریقے ہیں، تو ایک طریقہ یہاں پہ بیان کیا جائے گا جو آسان ہے سمجھنے کے لیے. یہ ان 4 رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے یہ تسبیح 15 مرتبہ پڑھی جاتی ہے. یعنی پہلی رکعت جب پڑھیں گے اللہ اکبر سبحانک اللہم اعوذ باللہ، اس سے پہلے 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھی جائے گی، تیسرا کلمہ. और रुकू में जाने से पहले 10 मरतबा, रुकू में जब रुकू की तस्बीह पढ़ चुके हैं सुभान रब्बी अलाउई, तो उसके बाद 10 मरतबा ये तस्बीह पढ़ी जाएगी, तीसरा कलमा, और रुकू से उठकर 10 मरतबा पढ़ा जाएगा ये कलमा। फिर पहले सजदे में सुभान रब्बी अलाला, जो सजदे की तस्बीहात होती हैं, उसके बाद ये कलमात 10 मरतबा पढ़े जाएंगे। दोनों सजदे के बीच में बैठते हैं उसमें 10 मरतबा पढ़े जाएंगे, और दूसरे सजदे में जब सजदे की तस्बीह सुभान रब्बी अलाला पढ़ लें 3 मरतबा, तो फिर ये तस्बीह पढ़ी जाएगी 10 मरतबा। यानी सूरह फातिहा पढ़ने से पहले 10 मरतबा, और रुकू से सूरह फातिहा से पहले 15 मरतबा, और रुकू से पहले रुकू के अंदर और रुकू के बाद 10 10 मरतबा, और दोनों सजदों में और दोनों सजदे के दरमियान 10 मरतबा। ये 75 75 मरतबा एक रिकत में हो गए, और 4 रिकत में 300 मरतबा। तो ये नमाज सलातु तस्बीह पढ़ाई पढ़ी जाती है, और ये बहुत ज़माने से सुलहा का, बुज़ुर्गों का, उलमा का मामूल है, और उसकी इतनी फजीलत और इतनी बशारतें जब आई हैं तो इसको छोड़ने वाला महरूम है इसमें। यानी कोई शक करे कि ऐसा है, किताबों में देख लें इसकी दलीलें, इसकी असनाद, तो ये जो है हम चाहिए कि बाज़ मशाइख का मामूल है कि जुमे के दिन पढ़ते हैं हर हफ्ते। यानी आदमी हो सके तो रोज़ पढ़ ले, रोज नहीं पढ़ सके तो हफ्ते में एक दफ़ा पढ़ ले, महीने में एक दफ़ा, साल में एक दफ़ा, कभी ज़िंदगी में एक दफ़ा तो पढ़ ही ले। और इसमें औसत दर्जा ये है कि हर जुमे को पढ़ ले आदमी जुमे की रात। अब इतनी लंबी लंबी रातें हैं, मगरिब से इशा, असर से इशा तक 4 घंटे का वक्त होता है, उसमें 20 मिनट निकाल कर पढ़ ले। असर के बाद जो है मकरूह वक्त होता है, मगरिब के बाद पढ़ लिया जाए। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता करे सलात उत तस्बीह पढ़ने की। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मद। नमाज की अहमियत पर हज़रत शेख अब्दुस्सत्तार साहब की किताब में से कुछ नसीहतें पढ़ी जाएंगी, अल्लाह ताला इनके दर्जात बुलंद फरमाए। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अब्दुल्ला बिन कैस रदी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, हज़रत आयशा रदी अल्लाह अन्हा ने मुझे ताकीद की कि रात का खड़ा होना यानी तहज्जुद की नमाज पढ़ना कभी ना छोड़ना, इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी भर तहज्जुद की नमाज नहीं छोड़ी, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार होते या थके हुए होते तो बैठ कर तहज्जुद पढ़ लिया करते थे। तो फरमाया कि तहज्जुद की नमाज कभी ना छोड़ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी बीमार भी होते या थके हुए होते तो बैठ कर तहज्जुद अदा कर लिया करते। किताब में उन्होंने बाज अल्लाह वालियों का जिक्र किया है, किस तरह से जो है उन्होंने अल्लाह की इबादत की। हज़रत हबीबा अदविया रहमतुल्लाहि अलैहा के मुतालिक रिवायत है कि आयशा की नमाज के बाद छत पर चली जाती थी, फरमाती थी कि ए अल्लाह, आँखें सो गई हैं, सितारे चमक गए हैं, बादशाहों ने अपने दरवाजे बंद कर लिए, दोस्त दोस्तों के पास चले गए, और मैं आपके सामने खड़ी हूँ। फिर नमाज में मशगूल हो जाती हैं यहाँ तक कि सुबह हो जाती। फिर फरमाती हैं कि ए अल्लाह, ये रात गुजर चुकी है, दिन की आमद है, काश मुझे मालूम होता कि ये रात आपके यहाँ कबूल हो चुकी है तो मैं मुबारकबाद वसूल करती, और अगर कबूल ना होती तो मुझसे ताज़ियत की जाती। आपकी इज्जत की कसम, जब तक मैं ज़िंदा हूँ यही कैफियत मेरे और आपके दरमियान रहेगी, और आप अगर मुझे अपने दरवाजे से धुतकार भी दें तो मैं आपकी सखावत और करम को देखते हुए आपके दरवाजे से नहीं जाऊंगी। अल्लाह वालियाँ उनका इतना अल्लाह से ताल्लुक, रात भर इबादत करती। जद्दाद बिन औस रहमतुल्लाह अलैह बिस्तर पर लेटते तो बेचैन होकर उठ जाते, फरमाते कि ऐ अल्लाह, जहन्नम की आग ने मुझे नींद से महरूम कर दिया है, ये कहकर अपने रब के साथ राज व न्याज में मशगूल हो जाते। इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह से एक शख्स ने अर्ज़ किया कि मैं क़यामुल लैल नहीं कर सकता, आप मुझे कोई दवा बता दें। आपने फरमाया, मियाँ, दिन में गुनाह छोड़ दो, जब तुम दिन में गुनाह छोड़ दोगे तो हक़ ताला तुम्हें अपने सामने खड़ा कर लेंगे, और राज उसमें यह है कि रात में अल्लाह के सामने खड़ा होना बहुत बड़ी इज्जत है, और नाफरमान इस शख्स का मुस्तहिक नहीं हो सकता। जो हमारे सलफ़ बुज़ुर्गों ने तहज्जुद में इतनी मेहनत की है, हम कोशिश करके पहले 5 वक्त की नमाज वक्त पे, और ख़ास तौर से आज के ज़माने में जो फजर के वक्त उठ जाए तो मुजाहदा है, नींद कम होती है, लेकिन बहुत बरकत हासिल होंगी। पूरे दिन अल्लाह की हिफाजत में रहना और जो है रिस्क में बरकत, और सुबह के वक्त के में बरकत है इस उम्मत के लिए। कोशिश करके सुबह के वक्त जो है आदमी वक्त पर बेदार हो जाए, रात को वक्त पर सोना, उसके लिए असबाब इख्तियार करना, कोशिश करना। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। अमीन। ये रजब का मुबारक महीना है और कुछ दिनों के बाद 27 रजब आने वाली है। आज जो है यहाँ पर अमेरिका में शरिया बोर्ड के मुताबिक यहाँ 17 रजब है। ये जब 17 रजब का दिन ख़त्म हो रहा है तो अभी मगरिब आएगी तो 18 रजब शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब है आइंदा हफ्ते इंशाल्लाह 25 और उसके बाद तो 27 रजब, और मेराज की कुछ बातें आइंदा हफ्ते अर्ज़ की जाएंगी। लेकिन आज जो है एक सफ़ा उसके लिए, जैसा ये हलका जो है मुख्तसर वक्त में सारी बातें बता देने का है, इसलिए इसमें जल्दी जल्दी हम लोग पढ़ लेते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा की सैर कराई गई। वहाँ से जहाँ तक अल्लाह ने चाहा अपने नबी को अपना कुर्ब बख्शा और आसमानों में अपने निशानात का मुशाहिदा कराया और अम्बिया अलैहिस्सलाम का इज्तिमा दिखाया। ये सफ़र क्या था? अल्लाह की तरफ से एक उम्दा मेहमानी थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तसल्ली का ज़रिया था। और सफ़र ताइफ़ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस तकलीफ़ का सामना करना पड़ा था, ये उसका बदला था। ये जो है मौलाना अबुल हसन नदवी साहब की जो है किताब कससुन नबीयीन, उसमें से ये तर्जुमा है इसका। जब सुबह हुई तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश मक्का के पास गए, उन्हें जाकर खबर सुनाई मेराज का वाकया। उन्होंने इनकार किया, नामुमकिन जाना, कैसे मुमकिन है आप यहाँ से चले गए बैतुल मक़दस, वहाँ से आसमान में चले गए वापस भी आ गए, कैसे मुमकिन? आपको झुटलाया और आपका मजाक उड़ाया। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने जैसे ही सुना तो फौरन कहा, अल्लाह की कसम अगर ये बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कही है तो ज़रूर सच है, तुम्हारे लिए इसमें ताज्जुब की कौन सी बात है? अल्लाह की कसम वो बताते हैं कि उनके पास रात या दिन के एक लम्हे में आसमान से ज़मीन पर खबर आती है, तो मैं उसको भी सच समझता हूँ, और ये बात जिसे तुम अजीब समझते हो बड़ी है। अल्लाह ताला ने इस मौके पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उम्मत पर दिन रात में शुरू में 50 नमाजें फ़र्ज हुईं, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसानी का सवाल करते रहे, इतनी रहमत, आसानी का सवाल करते रहे, यहाँ तक कि अल्लाह ने रात दिन में 5 नमाजें रहने दी और फरमाया कि जो 5 नमाजों को अदा करेगा उसे 50 नमाजों के बराबर ही सवाब मिलेगा। अल्लाह की मेहरबानी। अल्लाह ताला हमें मुकद्दस रातों के इहतराम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब एक सबक जो है वो इल्म की फजीलत और अहलुल्लाह और बुजुर्गान के बारे में अच्छा एहतराम उनका करना, इस बारे में कुछ बातें पढ़ी जाएंगी। बा अदब बा नसीब शेख ज़ुल्फ़िकार साहब दामत बरकातहुम की किताब है और हम लोगों को अदब सीखने की बहुत ज़रूरत है। हकीम जालीनूस, बहुत मशहूर हकीम गुजरे, उनसे किसी ने पूछा कि तुम अपने साथियों से इल्म और हिकमत में मुमताज़ कैसे हो गए। हकीम जालीनूस से पूछा गया कि आप अपने साथियों से इल्म और हिकमत में बढ़ कैसे गए। उन्होंने फरमाया कि मैंने किताब के मुताले के लिए चराग, यानी रात में लालटेन में तेल लैंप में डालने के लिए चराग पर इससे ज़्यादा खर्च किया जितना लोग शराब पर खर्च करते हैं। इमाम जोहरी रहमतुल्लाह अलैह जब मुताला करने किताब पढ़ने बैठते तो उनके इर्द गिर्द किताबों का ढेर लगा होता, उनको इस कदर इनेमाक होता कि दुनिया माफिया की खबर भी नहीं होती। अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनसे पूछा गया कि आप इतने बड़े अल्लामा कैसे बने। उन्होंने फरमाया कि मैं किताबों के अदब की वजह से हजरत कश्मीरी बना। तो लोगों ने कहा कि हज़रत किताबों का अदब तो और लोग भी करते हैं। फरमाया जितना अदब मैं करता हूँ उतना शायद ना करते हो। मैंने बग़ैर वजू कभी किसी किताब का मुताला नहीं किया। मुताले के दौरान किताब को अपने ताबे करने के बजाय अपने को किताब के ताबे किया। मसलन बुखारी शरीफ का मुताला कर रहा हूँ और हाशिए की यानी साइड में नीचे एक इबारत पढ़नी हो, बड़ी किताब होती है लंबे साइज़ की, ऐसा नहीं किताब पलट दिया इधर डाल दिया फर्श पर डाल दिया। तो फरमाया कि किताब को अपनी जगह पड़े रहने देता हूँ और खुद अपनी जगह बदलकर चारों तरफ से जाकर हाशिया पढ़ लेता हूँ। किताब बड़ी सी खुली रखी हुई है, अपनी जगह बदल ले, जहां जहां जाके पढ़ना है पढ़ लो। फरमाया कि मैंने चारपाई पर बैठे हुए कभी किसी दीनी किताब को पाइंती की तरफ, पैरों की तरफ नहीं रखा, हमेशा सरहाने की तरफ रखा। फिर अब किताबों को बता रहे हैं कि एक किताब के ऊपर दूसरी किस तरह रखनी है। कभी तारीख की किताबों को फनून की किताबों पर नहीं रखा, कभी फनून की किताबों को फिकह की किताबों पर नहीं रखा, कभी फिकह की किताबों को हदीस की किताबों पर नहीं रखा, कभी हदीस की किताबों को तफसीर की किताबों पर नहीं रखा, और कभी जो है तर्जुमा तफसीर कुरान को कुरान मजीद के ऊपर नहीं रखा। सबसे ऊपर कुरान, फिर तफसीर, फिर हदीस, इस तरह फिकह और मखदूस दूसरी किताब। अगर कोई अलमारी है मस्जिद में इस तरह से हो जाए बहुत अच्छा। फरमाते हैं किताबों के अदब ने मुझे अनवर शाह कश्मीरी बना दिया। छोटी छोटी जो है अदब ऐसी चीज़ है आदमी को कहाँ से कहाँ पहुँचा देता। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने अपने हालात ज़िंदगी में लिखा कि टटोलने से मुझे मालूम हुआ, बहुत बड़े अपने वक्त के इमाम थे, बहुत पढ़ना पढ़ाना, इतने शागिर्द हज़ारों, बादशाह के यहाँ उनकी इज्जत। उन्होंने अपने आप को टटोला तो मालूम हुआ कि मेरी तमाम तवज्जो उन उलूम पर है जो दुनिया में को फ़ायदा पहुंचाने वाले, यानी उनसे इज्जत होगी और उससे मिलेंगी चीज़ें, असबाब मिलेंगी, दीन की ही मुतालिक थी। लेकिन उन्होंने फरमाया कि ऐसे उलूम पर तवज्जो है जो दुनिया में फ़ायदा पहुंचाने वाले ज़्यादा हैं। मैंने अपनी नीयत को टटोला तो उसमें तलब जाह और हुसूल शोहरत को पाया, यानी मेरी शोहरत हो, ज़्यादा हो, नाम हो, बस मुझे अपनी हलाकत का यकीन हो गया। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमा रहे हैं कि बस जब अपने दिल को टटोला, नीयत देखी, तो मुझे पता चल गया कि अब मैं हलाक हो जाऊंगा। हालांकि बहुत बड़े इमाम दीन की मेहनत कर रहे थे। मैंने महसूस किया कि गार के किनारे खड़ा हूं, अगर इस्लाह की कोशिश न की तो बड़ा खतरा है। बस ये ख्याल आने के बाद इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह 11 साल तक तज़किया नफ्स और दिल की सफाई की मेहनत में मशगूल रहे, हत्ता कि उनका दिल तमाम आलाइशों से पाक हो गया। ऐसी फिर बड़ी बड़ी किताबें और इतना उनका फैज जारी हुआ। उनको हुज्जतुल इस्लाम कहते हैं, इस्लाम की हुज्जत, इमाम गजाली रहमतुल्लाह। बेहतरीन इल्म सीखने वाले वो हैं कि बावजू सारे काम छोड़कर क़िबला रू कहीं बैठे, मसल्ले पर बैठे, अच्छी बात को लिख ली और अल्लाह से दुआ करते बैठे, अल्लाह मुझे भी सिखा दे, मुझे भी चाहिए, मैं भी मोहताज हूँ, ये सारी बातें मुझको भी चाहिए। आदमी हरीस हो, आदमी इल्म का हरीस हो, अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। अल्लाह, बुज़ुर्गों से ताल्लुक़ रखने में क्या फ़ायदे हैं, एक दो बातें इसकी पढ़ी जाएंगी। अहलुल्लाह से अकीदत और मोहब्बत रखने से इंसान की ज़िंदगी में इनकलाब आ जाता है, गफलत की ज़िंदगी इताअत से बदल जाती है। छोटी सी मजलिस में चंद बातों से भी बहुत फ़ायदा हो सकता है। ये हज़रत मौलाना हकीम अख्तर साहब का मजमून है, फरमाते हैं कि सख्त सर्दी में एक प्याली गर्म चाय से कैसा फ़ायदा होता है, या गर्मी बहुत है तो ठंडा शरबत पी ले कैसा फ़ायदा होता है। जैसे एक इंजेक्शन डॉक्टर का जब अल्लाह शिफा दें तो 104 डिग्री बुखार उतार देता है। एक हकीम को बादशाह के पास ले गए कि बादशाह सलामत बीमार हैं, इलाज कीजिए। हकीम साहब आए, उन्होंने कुरान शरीफ की आयात पढ़नी शुरू कर दी। वजीर नाराज़ हो गया, बादशाह बीमार हैं, इलाज कीजिए, दवा दीजिए, आप कुरान पढ़ रहे हैं। तो हकीम साहब बोले कि वजीर साहब आप सरासर जाहिल हैं, निकम्मे। वजीर बहुत नाराज़ हुआ, उसका चेहरा लाल हो गया, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, सर से पैर तक यानी तब्दील हो गया कि अभी कोई नुकसान पहुंचा देगा। तो हकीम साहब ने कहा ठहरिए, मेरे दो गंदे बोलों ने आपके बदन में इतनी तिब्बी मेडिकल तब्दीलियाँ लाई हैं, आपका ब्लड प्रेशर तब्दील हो गया, आपके जो है वो दौरान खून तब्दील हो गया, आपका निज़ाम हजम तब्दील हो गया, सर से पैर तक सारी तिब्बी मेडिकल जो तब्दीलियाँ थी गिनवाई कि मेरे दो गंदे बोलों ने आप पे ऐसा असर किया, तो मैं अल्लाह का कलाम पढ़ रहा हूँ, उससे बादशाह ठीक नहीं होगा तो क्या होगा। अल्लाह का कलाम जो है उसमें शिफा है, आयात शिफा पढ़नी चाहिए। अहलुल्लाह की नस्बत जो है वो अल्लाह सुबहानहू व तआला के साथ बहुत ऊँची है। एक मजमून शायद पहले पढ़ा था या नहीं, कि अगर एक ईंट सड़क पर पड़ी हो तो हर आदमी ठोकर मार देगा, और वो ईंट अगर घर में लगी है तो कोई उखाड़े तो आप जाके मुकाबला करेंगे, घर वाला लड़ेगा। वही ईंट अगर मस्जिद में लगी हो और कोई उखाड़े तो पूरे अहले मोहल्ला जाकर मुकाबला करेंगे कि ये ईंट मत निकालो, मस्जिद की ईंट है। वही ईंट अगर बैतुल्ला में लगी हो, खाना खाबा में, और कोई निकालने जाए तो पूरी उम्मत मुकाबला करेगी कि ये ईंट नहीं निकाल सकता। तो हमारी निस्बत अल्लाह के साथ हो जाए, मशायख, बुजुर्गान, औलिया, सिद्दीकीन, सालिहीन। इसमें मौलाना हकीम अख्तर साहब फरमाते हैं कि अतर या परफ्यूम 100 रुपया तोला जिस शीशी में हो, शीशी की भी इज्जत की जाती है। तो जिस दिल में अल्लाह की मोहब्बत और मारफत हो, उस बंदे और बंदी की भी इज्जत होती है। अल्लाह वाले दूसरों के लिए रहमत होते हैं। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह इंतकाल हुआ, दफन किए गए, दफन के 230 साल के बाद उनके पड़ोस में दूसरी कब्र खोदी गई किसी और को दफन करने के लिए। तो इत्तेफाक से इमाम की कब्र खुल गई, तो लोगों ने देखा कि 230 साल के बाद भी कफन बिल्कुल ताज़ा है, बदन भी बिल्कुल ताज़ा है, जैसे आज ही दफन किया गया। ऐसा जिस दिल में अल्लाह होता है, जिस बदन में, उसकी ऐसी इज्जत होती, मरने के बाद भी उनकी इज्जत हो रही, कब्र में जाकर भी हो रही। एक बहुत अहम मजमून पढ़ा जाएगा, वो मुसलमानों के इकराम से मुताल्लिक है। इन्नमल मुमिनून इख्वा, बेशक मोमिनीन आपस में भाई भाई। मुसलमान की मदद को चलना 10 साल के एतकाफ का सवाब मिलता है, चाहे मदद करना आता हो नहीं आता हो, लेकिन चल खड़ा हुआ मुसलमान भाई के मदद करने को। बीमार की आदत करने से 70,000 फरिश्ते दुआ करते हैं। ये मुख्तलिफ अहादीस हैं, इसकी कुतुब अहादीस की खोल कर देख ली जाए। हमारा मकसद सिर्फ इशारा करना, तवज्जो दिलाना है। मुसलमान से मुलाकात के लिए गए तो जन्नत में महल मिलता है। बेवा मिस्कीन की खबरगीरी करना ऐसा है कि दिन भर रोज़ा रखा हो, रात भर नमाज पढ़ता हो। बेवा मिस्कीन की खबरगीरी करना। शौहर बीवी एक दूसरे को मोहब्बत और रहमत से देखते हैं तो अल्लाह ताला उन दोनों को रहमत से देखते हैं। मुसलमान के लिए दुआ करना, फरिश्ते आपके लिए दुआ करेगा। जनाजे के साथ जाना ऐसा है कि किरात यानी बड़े पहाड़ का सवाब मिलता है। तो ये मुसलमान की अहमियत है, हर वक्त सवाब लेने का जरिया है मुसलमान। कोई मुसलमान आ गया खुश, भाई इससे अब मुझे सवाब मिलेगा। लेकिन अगर उसकी मुसलमान की इज्जत नहीं की और उसको नुकसान पहुंचाया तो उसका कितना बड़ा गुनाह है। तो मुसलमान की गीबत मुर्दा भाई के गोश्त खाने के बराबर है। जो किसी मुसलमान के आयब के पीछे पड़ेगा, अल्लाह ताला उसको रुसवा करेंगे। जो मुसलमान का हक दबा लेगा, क़यामत में मकबूल नेकियाँ देनी पड़ेंगी। कोई एक साल बातचीत बंद कर दे घर में, रिश्तेदारों में, ऐसा है जैसे उसको मार ही डाला, इतना गुनाह है कि मार ही डाला। दिल आजारी करना बहुत गुनाह है। जबान की आफात से बचना चाहिए और दिल की आफात से बचना चाहिए कि मखलूक से हसद, जलन, तकबुर, रिया, इससे आमाल बर्बाद होते हैं, दुनिया आखरत सबका नुकसान। कैसा ही गुनहगार हो, लेकिन गुनाह से नफरत हो, आदमी से नफरत नहीं हो। मुसलमान है, कलमा गो है, हमारा पड़ोसी है, रिश्तेदार है, वगैरह वगैरह। सिला रहमी, अच्छा गुमान रखना मखलूक से खैरख्वाही, इससे अल्लाह की रहमत आती। इस्लाम ने जबान, नस्ल, बरादरी, कबीला, कौम, ये सब ऊंच नीच खत्म कर दिया और जाहिलाना रस्में मिटा दी। इसने कलमा पढ़ा है, दुनिया में कहीं रहता हो, किस रंग का है, कैसा ही जबान बोलता है, हमारा दीनी भाई है। सलमान फारसी रज़ी अल्लाह अन्हु ईरान से आए और मुसलमान हुए और सहाबी हुए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरे अहले बैत में से हैं, वह मेरे घर वालों में से हैं सलमान फारसी। बिलाल हबशी रदी अल्लाह अन्हु स्याह फाम गुलाम थे, अबू बकर रदी अल्लाह अन्हु ने आज़ाद कराया। सहाबा उनको कहते थे सैयदना बिलाल, मेरे सरदार बिलाल। उमर रदी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, अमीरुल मोमिनीन कह रहे हैं मेरे सरदार बिलाल। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी कदमों की आवाज़ जन्नत में सुनी। बिलाल जमीन पर आजीजी से चल रहे हैं और कदमों की आवाज़ आसमान में आ रही, ऐसा मकाम। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज के लिए अजान बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु देते, आकर बुलाते नमाज का वक्त हो। सहाबा का एक सफर था, उसमें बकरी चराने वाला एक चरवाहा आया स्याह फाम और आकर मुसलमान हो गया। उस वक्त न नमाज का वक्त था कि उसको नमाज सिखाते, न रमज़ान था कि रोज़ा रखवाते, न हज का वक्त था कि उसको हज पर ले जाते, न उसके पास कुछ पैसे थे कि वो ज़कात देता। थोड़ा आगे गया, अल्लाह के रास्ते में शहीद हो गया। उलमा फरमाते हैं ये वो आदमी है जो एक सजदा किए बगैर सीधा जन्नत में गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर बशारत दी कि अल्लाह ताला ने इसके जो है चेहरे की यानी सियाह रंगत को सफेदी से तब्दील कर दिया। अब आगे कितना उसका खैर मकदम हो रहा है, इसलिए उलमा फरमाते हैं कि वहाँ देखना है कि कैसे रहे, यहाँ ऐसे रहे कि वैसे रहे, इसका कोई मसला नहीं। अब जो बात कहने की है वो ये है कि हमें खबर मिली और ये बिल्कुल मुस्तनद बात है, वो ये है कि हिंदुस्तान के बाज़ गांव में लोग मुर्तद हो रहे थे इस्लाम छोड़कर, यानी दूसरे दीन में चले गए जहालत की वजह से, गफलत की वजह से, गुर्बत की वजह से। तहकीक करने वाले पहुंचे कि भाई क्या हुआ, गांव गांव गए, बताया हमने खुद पूछा, तो जाकर गांव में पूछते हैं कि भाई कितने लोग मुसलमान हैं फैमिलियां, तो फिर गांव वाले ने बताया 20 मुसलमान फैमिलियां हैं। मैंने कहा अरे भाई और भी सोचो, बाहर जो रहते हैं गांव के इधर उधर वो भी तो होंगे। तो कहने लगे गांव वाले कि अरे वो तो पत्थर कूदने वाले हैं। अब भाई कोई बात नहीं, कितने हैं फैमिलियां? वो कहने लगे कि भाई वो जो है 30 के करीब फैमिलियां बाहर रहती, तो उनको मुसलमान में यानी शुमार नहीं कर रहे, उनको अपनी मस्जिद में आने नहीं दे रहे, तो बाद में क्या होगा कि आहिस्ते आहिस्ते वो उनमें दीन चला जाएगा। तो भाई जो एक इस तरह हिंदुस्तान में गैर मुसलमान खानदान मुसलमान हुआ, तो बेटी ने कुरान हिफ्ज किया, बेटी ने कुरान पढ़ा, और यानी गैर मुस्लिम खानदान इस्लाम में आया, तो बाद में जो है जब वो बड़े हुए तो मुसलमानों ने उस यहाँ कहीं उसकी यानी शादी नहीं हो रही, कहीं से उसका रिश्ता नहीं आ रहा, तो भाई ये लोग अभी अभी मुसलमान हैं। हत्ता कि वो उसका बाप इतना परेशान हुआ, इतना परेशान हुआ, बेटी ने कुरान हिफ्ज किया हुआ, अभी इस्लाम कबूल किया, कुरान पढ़ रहे, तो उसको अपनी बेटी की शादी किसी गैर मुस्लिम जगह में करनी पड़ी। अब जब ये वाकया पेश आया तो सब लोग परेशान, तो उलमा बड़े आलिम को लिखे और आलिम ने किसी को भेजा और उन्होंने जाकर जो है तो लड़के को तरगीब दी, फिर बाद में बड़ी दुआएं की, तो वो जो है जहाँ शादी हुई थी वो लड़का ही आखिर में मुसलमान हो गया। तो भाई पत्थर कूटने वाला हो या लकड़ी कूटने वाला हो या जूते सीने वाला हो, जो कलमा गो है हो सकता है अल्लाह के यहाँ उसका मकाम हमसे बहुत ज़्यादा है। इस्लाम में जो है ज़ात पात, ऊंची नीची, बरादरी, ये सब चीज़ों की कोई अहमियत नहीं है। तो भाई हमें जो है ना, जो इस्लाम में दाखिल होता है आता है तो उसकी खबरगिरी करना हमारा फ़र्ज है, और वरना उम्मत पे उसका फिर गुनाह है। अल्लाह ताला हमें जो है हर मुसलमान की जो है कदर करने की तौफीक अता करे। जन्नत में जाने के कुछ आसान रास्ते, हमारे पास दोस्तों ने फरमाइश की कि ऐसे आमाल बताए जाएं जिनसे बहुत सारे गुनाह माफ़ हो जाएं, बहुत सारी नेकियां मिल जाएं। तो जैसे सलातो तस्बीह बताई गई कि इससे बहुत गुनाह माफ़ हो जाते हैं। एक आसान तरीका है वज़ू बहुत अच्छे तरीके से करना, तो हर एक वज़ू धोने पर उसके गुनाह झड़ते हैं, और यानी सगीरा गुनाह, हत्ता के नाखूनों के अंदर से भी गुनाह निकल जाते हैं। इतना आसान अमल है, दिन में 5 मरतबा करते ही हैं, वजू के फ़राए, सुन्नतें, मुस्तहब, दुआओं के साथ, अल्लाह के ध्यान के साथ, ये खुद एक इबादत है। इसमें मशक्क़त नहीं है कि सुबह उठ के अब ठंडे पानी से, गर्म पानी से वजू करो, ये भी एक इबादत है, उससे गुनाह माफ़ हो रहे हैं। उलमा ने यानी रिसाले लिखे हैं कि गुनाहों के कफ़ारा, ऐसे आमाल जिनसे जो है गुनाह माफ़ हो जाते हैं, ऐसे आमाल जिनसे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। ये मुफ्ती शफी मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने गुनाहों का कफ़ारा एक रिसाला लिखा है। हजरत फरमाते हैं कि कुरान हदीस से साबित है कि मुसलमानों पर दुनिया में जो मुसीबतें आती हैं वो गुनाहों का नतीजा होती हैं, और असली इलाज ये है कि गुनाहों पर नदामत हो, तौबा इस्तिग़फ़ार, आइंदा के लिए तर्क का इरादा, उसके मुवाफिक अमल करना है। हजरत फरमाते हैं कि रुश्वत, सूद, झूठ, फरेब, जुल्म गोया ज़रूरियात ज़िंदगी में शामिल हो गए, यहाँ तक कि बहुत से मुसलमान अपने आप को इन चीज़ों में मजबूर और माजूर समझकर बेफिक्र हो गए, समझने लगे कि गुनाहों से तौबा दुनिया की ज़िंदगी को अपने और घर वालों पर ख़त्म कर देने के मुतरादिफ़ है। लेकिन ये हकीकत नहीं। अव्वल हक़ ताला शानहू ने रिस्क के इस कदर बेशुमार दरवाज़े खोले हैं कि ढूँढने वाले को आज भी हलाल रोज़ी मिल सकती है। ज़्यादा से ज़्यादा यह है कि कुछ मुश्किल या कुछ ख्वाहिशात नफसानी में कमी करनी पड़े, गो तो अजाब आखरत के मुकाबले में कोई चीज़ नहीं। और जो शख्स किसी मजबूरी की वजह से किसी गुनाह में मुबतला है मगर अपने आप को मुजरिम समझता है, उससे निकलने की कोशिश में लगा हुआ है, वो भी उम्मीद है कि तौबा करने वालों में दाखिल समझा जाए। इसलिए हर मुसलमान का फ़र्ज़ है कि पुराने गुनाहों को तदारुक और आइंदा से बचने के लिए कभी भी हिम्मत ना हारे, जिस कदर कोशिश हो फौरन शुरू कर दे। اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے کچھ روحانی تدبیریں بھی بتائی ہیں، جن سے اگلے پچھلے گناہ معاف ہوتے ہیں، توبہ قبول ہوتی ہے، گناہوں سے بچنے کی توفیق اور اس کے راستے آسان ہو جاتے ہیں. شیخ ابن العباس ایک رسالے میں لکھتے ہیں، اس زمانے میں گناہوں کا دریا ابل رہا ہے، چاروں طرف سے اس کی موجوں نے لوگوں کو گھیر لیا ہے، جس سے دامن بچا کے نکلنا سوائے مخصوص اہل اللہ کے سخت دشوار ہو گیا ہے. اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ فرائض و واجبات کے بعد ان مکفرات ذنوب یعنی جو خطاؤں کا کفارہ ہے ان کا اہتمام کرے، کہ جو شخص ان میں مشغول رہا اس کی مصیبت ہلکی ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات، نیک عمل گناہوں کو مٹا دیتا ہے. حدیث میں ہے، تم سے کوئی گناہ ہو جائے اس کے بعد نیک کام کر لو، گناہ کے اثر کو مٹا دے گا. ایسا شخص جو گناہوں میں مبتلا رہا ہو اور کفارات ذنوب میں بھی مشغول رہا، اس کی مثال ایسی ہے کہ بیماری اور پرہیزی کرتا ہے، دوا بھی جاری رکھے، وہ اس سے غنیمت ہے جو بد پرہیزی کرے اور دوا کا کوئی اہتمام نہ کرے. تو ایسے جہاں اعمال بتائے جائیں کہ اس عمل سے یہ ہوتا ہے، فوراً دوڑنا چاہیے کہ مجھ کو بھی چاہیے، اور جہاں بتایا جائے کہ فلاں گناہ سے یہ نقصان ہوتا ہے، فوراً بچنا چاہیے. یعنی مومن جو ہے اس کی شان یہ ہے کہ ہر چھوٹی سے چھوٹی نیکی کی طرف لبکے اور ہر چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بھاگے، کیونکہ ہر نیکی میں خاصیت ہے جنت کی طرف لے جانے، اور ہر گناہ میں خاصیت ہے جہنم کی طرف. تو کفارات ذنوب جو ہے گناہوں کا کفارہ، وہ لکھے ہیں، وضو کی پوری تکمیل، اچھی طرح سے وضو کرنا، اذان کے جواب میں ایک دعا پڑھنا، اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں، باجماعت نماز میں مقتدیوں کا امام کے ساتھ آمین کہنا، اس میں بھی گناہ معاف ہو جاتا ہے، چاشت کی نماز صلاۃ الضحیٰ پڑھنا، صلاۃ التسبیح پڑھنا، رمضان کے روزے رکھنا، رمضان میں قیام تراویح کرنا، رمضان میں بہت کم وقت ہے، رمضان شریف آنے والے ہیں، تیاری، اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان شریف دکھائے، آمین. شب قدر کا قیام، یوم عرفہ کا روزہ، اس سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، حج کرنا، اس سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور حج میں مقام ابراہیم کے پیچھے دو رکعت نماز پڑھنا، وہاں گناہ معاف ہو جاتے ہیں، حج پر جانا، وقوف عرفہ، مزدلفہ، وہاں گناہ معاف ہو جاتے ہیں، سورہ حشر کی تلاوت سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، سفر میں اگر کوئی بیمار ہو گیا اس سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اپنی اولاد کو قرآن پاک کی تعلیم دینا، اس سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، سبحان اللہ والحمدللہ واللہ اکبر پڑھنا، گناہ معاف ہو جاتے ہیں، غریب مسلمانوں کی حاجت روائی کرنا، گناہ معاف ہو جاتے ہیں، راستے سے کانٹا ہٹانا، اس سے بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں، مسلمانوں کا اخلاص کے ساتھ مصافحہ کرنا ہے، مردوں کا مردوں سے ہاتھ ملانا یا خواتین کا خواتین سے ہاتھ ملانا، اس سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، کھانے اور پہننے کے بعد دعا پڑھنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، نابینا کوئی شخص ہے اس کی امداد کرنا، اس سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. آنکھ میں تکلیف ہوئی، بزرگ آئے، انہوں نے فرمایا کوئی نابینا تلاش کرو، اس کو جا کے صدقہ دو، وہیں آنکھ ٹھیک ہو جائے گی. جو آدمی 90 سال کی عمر تک پہنچ گیا تو یہ بھی ایک اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، اس سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اللہ کی رحمت بہانے ڈھونڈ رہی ہے، بہانے بہانے. اس طرح بعض اعمال ایسے ہیں کہ بیٹھے بیٹھے فرمائے گا جنت میں داخل ہو جائے گا، جو ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا تو موت آتی جنت میں پہنچ گیا، صبح شام 7-7 مرتبہ جو پڑھ لے، اللہم اجرنی من النار، فجر کے بعد پڑھ لیں، مغرب کے بعد، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، تو جہنم سے رہائی پا لیں. سید الاستغفار پڑھ لیں تو وہ اگر اس دن اس کی موت آ گئی تو جنتی ہوگا. اس طرح کے اعمال جو ہے ان کا آدمی کو حریص ہونا چاہیے کہ یہ تو ہم کوشش کر رہے ہیں سب چیزوں کی، اور ان میں بھی جو ہے صبح شام جو ہے محنت کرے. اس میں انشاءاللہ اس موضوع سے متعلق مزید باتیں اور بیان کی جائیں گی آئندہ، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک سبق ہے چھوٹا سا بچوں کی تربیت کے بارے میں، جسے حضرات فرماتے ہیں کہ قصص اور جو ہے اچھی حکایات ان کو سنائی جائیں، اور جیسی تربیت والدین کریں گے بچوں پہ اس کا اثر پڑ جاتا ہے. ایک بزرگ تھے، وہ فرماتے ہیں کہ مچھلی پکڑنے جاتے تو اپنے بیٹی کو ساتھ لے جاتے، چھوٹی بچی کو، اور اس کو وہ بتاتے کہ دیکھو جس مچھلی نے اللہ کے ذکر سے غفلت کی وہ پکڑی گئی. تو بیٹی کا جو ہے ایسا ذہن میں بات آ گئی کہ یہ جس मछली ने अल्लाह का जिक्र नहीं किया, वो पकड़ी। तो अगले दिन उन्होंने कुछ मछलियां पकड़ी हैं, पकड़ पकड़ कर बेटी को देते जाते ये लोग। तो बेटी जो है वो मछली के कान में कहती कि देखो एक मौका और है, आइंदा अल्लाह के जिक्र से गफलत नहीं करना, लो इस दफा छोड़ देते। तो दोबारा दरिया में डाल देती। दिन के आखिर में कोई मछली नहीं आई, बुजुर्ग ने देखा कि थैला खाली है। तो उन्होंने पूछा कि बेटी ऐसा क्यों किया? तो बेटी ने कहा कि हम ऐसी गाफिल मछली क्यों खाएं, तो हम भी गफलत वाले हो जाएंगे। जिस मछली ने गफलत की वो पकड़ी गई, हम उसको क्यों खाएं? तो भाई जो है बच्चों को ऐसे शौक की हकायात सिखाई जाए, ऐसी बातें तो उनको शौक हो, शौकीन अगर कोई बच्चा है, शौक हो गया तो उसको जमीन पर बैठे बैठे यहाँ से 2,39,000 मील के फासले पे चांद है, चांद के गढ़े भी नजर आ जाते हैं। अरे ये मैदान है, ये पहाड़ है, ये गढ़ा है, ऊंचा है, नीचा है, सब नजर आ रहा है, इतनी तेज नजर होती। तो आदमी का चांद बच्चे देख लें तो उसमें जो चीजें साइंस में वो पढ़ते हैं उनको नजर आने लगे कि ऐसा ऐसा है यहाँ। और जिसको शौक नहीं हो तो स्कूल की किताब खोलते ही ऐसा होगा कि आंख में दर्द हो गया, होमवर्क नहीं होगा। तो शौक दिलाना चाहिए बच्चों को, जबरदस्ती सख्ती ना की जाए। तो बच्चों को ऐसे जो है हकायात सहाबा, कससुल नबीन, ऐसी बातें सिखाई जाए कि वो शौक से अपना काम करें। जो शेर ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह, उनके घराने में बच्चा हिफ्ज करता तो सुबह कहते भाई छत पर जाकर पूरा दोहरा लो, पूरा पहले पारे से आखिर तक दोहरा कर आ जाओ एक दफा, फिर खाना भी खा लो। बच्चे भी शौकीन, पूरा दिन जो है उसी में लगे रहते, उसी में लगे रहते। तो जिसको जिस चीज का शौक हो जाए तो अल्लाह ताला जो है उसको बरकत दे देते। बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। ये हमारे पास एक दरख्वास्त आई थी और बहुत अहम बात है, उसके लिए कुछ चीज़ पढ़ी जाएगी। वो ये है कि जब हम इस दुनिया से जाते हैं और हम सबको जाना है और वो वक्त सबका आने वाला है और माल दौलत जायदाद सबके पास होती है, तो ऐसा इंतज़ाम होना चाहिए कि उसके बाद वो अपने वरसा को, जो घर वाले हैं, रिश्तेदार हैं, वो बराबर जो जैसा बताया गया है वैसे वैसे तकसीम करके उनको पहुँच जाना चाहिए। और इस मामले में उम्मत में कोताही पाई जाती है, तो हमारे एक बुज़ुर्ग ने फरमाया, हुक्म फरमाया कि उसके बारे में कुछ पढ़ा जाए, तो हम सबका फ़ायदा है इसलिए पढ़ा जाता। पहले उसमें तरगीब की कोई बात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब जनाजे के लिए मैयत लाई जाती जिस जो मकरूज़ होती, तो आप फरमाते कि क्या इसने कर्ज़ अदा करने के लिए माल छोड़ा है? अगर बताया जाता कि उसने इतना माल छोड़ा है तो उस पर नमाज जनाजा पढ़ते, वरना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम से फरमा देते कि इस पर तुम लोग नमाज पढ़ लो। सही हदीस में इरशाद है कि मोमिन का जब तक कर्ज ना अदा किया जाए उसकी रूह को सवाब या जन्नत में दाखिले से रोक दिया जाता है। एक शख्स ने अर्ज किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे भाई का इंतकाल हो गया, छोटे बच्चे छोड़ गया, क्या उन पर माल खर्च कर दूँ और कर्ज अदा ना करूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा भाई कर्ज की वजह से पहले कैद है, यानी मुकैद है, पहले कर्ज अदा करो, कर्ज अदा करो। उमरू बिन जियार रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है, जो शख्स मरता है उसकी रूह फरिश्ते के हाथ में रहती है, अपने जिस्म को देखती है कि कैसे उसको गुस्ल दिया जाता है, कैसे कफन देते हैं, तख्ता लेकर चलते हैं, लाश अभी तख्ते पर ही होती है। फरिश्ता उससे कहता है कि लोग जो तेरी तारीफ कर रहे हैं सुन ले, ये बशारत अगली नेमतों की तमहीद है। अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस घर में कोई इंतकाल कर जाता है और घर वाले उसकी तरफ से सदका करते हैं, घर वाले उसकी तरफ से सदका करते हैं, तो इस सदक़े के सवाब को जिब्राइल अलैहिस्सलाम नूर के तबक में रखकर उसकी कब्र पर ले जाते हैं और खड़े होकर कहते हैं कि ऐ कब्र वालों, ये तोहफा तुम्हारे घर वालों ने तुमको भेजा है, इसको कबूल करो। बस वो मैयत खुश होती है और अपने हमसाया, यानी वहाँ पे भी एक कम्युनिटी है, अपने हमसाये मैयत को खुशखबरी सुनाता है, और जिसके हमसाये जिनको कोई तोहफा नहीं पहुँचता गमगीन रहते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा सदक़ात करके, इसाले सवाब करके, जितनी नफली इबादत हैं उनका सवाब अपने मरहूमीन को, जो दादा परदादा गुजर चुके हैं, उन सबको पहुंचाना चाहिए। अपने सवाब में कमी नहीं होगी, उनका भी भला होगा और एक रवायत बढ़ जाएगी, और जब हम जाएंगे तो फिर हमारे बच्चे और पोते और वो इस तरह अगली नस्लें दुआ करती रहेंगी हमारे लिए। اب اس میں جو ہے حضرت مفتی عبد الرؤف سکھروی صاحب دعوت برکاتہ کا مضمون ہے تقسیم وراثت کی اہمیت، رسالہ ہے تقسیم وراثت کی اہمیت. فرماتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں بڑی غفلت پائی جا رہی ہے، اچھے خاصے دیندار پڑھے لکھے لوگ اس میں مبتلا ہیں. وہ یہ ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو میراث کو تقسیم نہیں کرتے. پہلا حق کفن اور دفن کا انتظام ہے کہ اس کے مال جائیداد سے کفن دفن کے انتظام کے لیے خرچ کیا جائے. دوسرا حق قرض ادا کیا جائے کہ میت نے کتنے قرضے واجب الادا چھوڑے ہیں، ان قرضوں میں بیوی کا مہر بھی داخل ہے. لہٰذا اگر مرنے والے نے بیوی کا مہر ادا نہیں کیا تھا اور بیوی نے خوش دلی سے معاف بھی نہیں کیا تھا تو اس کے ذمے مہر ادا کرنا واجب ہے، اس کے مال سے دیا جائے گا. اور بیوی کو یہ مہر میراث کے علاوہ ملے گا. ابھی میراث تو تقسیم ہوگی وہ الگ بات ہے، یہ تو قرضہ ہے یہ پہلے تو. اس لیے کہ بیوی کے میراث کے حصے سے مہر کا کوئی تعلق نہیں، مہر ادا کرنا الگ ضروری ہے. حضرت نے ایک چیز لکھی ہے کہ شوہر کے انتقال کے بعد جب جنازہ گھر سے نکلنے لگتا ہے تو بعض خواتین بیوہ کو مہر معاف کرنے کے لیے مجبور کہتی رہی ہیں، اس سے کہتی ہیں تم جلدی سے مہر معاف کر دو. وہ بیچاری پہلے ہی انتقال کے صدمے میں پریشان ہوتی ہیں، دوسرے لوگ اس سے زبردستی مہر معاف کراتے ہیں. خوب سمجھ لو، اول اس طرح مہر معاف کرانا ناجائز ہے. اگر بیوہ مجبور ہو کر معاف کر دے تو بھی معاف نہیں ہوگا، بلکہ اگر کوئی زندگی میں زبردستی معاف کرائے تو بھی معاف نہیں ہوگا. یہ سب جو ہے قرضے ہیں. جو قرضے مرنے والا لکھ کر چھوڑ گیا ہے وہ ادا کرنے ہی ہیں. اگر اس کے علاوہ اندیشہ ہو کہ مرحوم کو قرضے وغیرہ لکھنے کی عادت نہیں تھی تو دوستوں سے اور جن لوگوں سے معاملات ہوتے تھے معلوم کرنا چاہیے، اور جو قرضے ثابت ہو جائیں ان کو ادا کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے. اور قرضے ادا کرنے کے بعد پھر کیا ہے کہ اگر میت نے کوئی جائز وصیت کی تو ایک تہائی مال سے اس کو پورا کیا جائے گا. مثلا اس کی کچھ نمازیں قضا ہو گئی تھیں پورا نہیں کر سکا اور وصیت کر دی کہ نمازوں کا فدیہ ادا کر دینا. مثلا کچھ روزے چھوٹ گئے تھے زندگی میں قضا نہیں کر سکا، وصیت کر دی کہ میرے روزوں کا فدیہ ادا کر دینا. یعنی ایک نماز اور ایک روزے کا فدیہ جو ہے وہ ایسا ہے ایک صدقہ فطر کے برابر. جو عید میں صدقہ فطر دیا جاتا ہے اور دو مسکینوں کو کھانا کھلانا، یہ جو ہے ایک نماز یا ایک روزے کا فدیہ ہے، بہت ضروری ہے. یا حج فرض ہو چکا تھا لیکن زندگی میں حج پر نہیں جا سکے، وصیت کر دی کہ میرے مرنے کے بعد حج بدل کرا دینا. یا وصیت کر دی کہ مرنے کے بعد فلاں مسجد میں کچھ پیسے لگا دینا، یا فلاں شخص کو اتنے پیسے بطور امداد کے دے دینا وغیرہ وغیرہ، یا اتنے خیرات میں دینا. یہ جائز وصیتیں ہیں، یہ اس کے مال کے ایک تہائی میں یہ جاری ہوں گی. باقی جو دو تہائی بچا اب وہ ورثہ میں تقسیم ہوگا. یہ چوتھا حق وراثت ہے، یعنی اس کو وارثین میں تقسیم کر دیا جائے. وصیت نافذ ہونے کے بعد جو دو تہائی مال بچے اس کو شریعت کے مطابق وارثین میں تقسیم کر دیا جائے. شیخ لکھتے ہیں کہ آج کل جو ہے اتنی غفلت ہے کہ بہت سارے، یعنی مرد بھی انتقال کر رہے ہیں، عورتیں بھی انتقال کر رہی ہیں. ہونا یہ چاہیے تھا کہ شہر کے اندر جتنے دارالافتاء ہیں، علماء صاحبان ہیں، ان کے پاس میراث کی تقسیم کے بیسیوں سوالات آنے چاہیے تھے، جبکہ یہ فرض ہے. تو لیکن میراث کے سوالات کی کوئی کثرت نہیں، یعنی کوئی آ کے مفتی سے پوچھتا نہیں مسئلہ، کہ جس کو جو ہاتھ میں آ گیا وہ لے کے چلا گیا. اللہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بیمار کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے. عیادت کی آپ بیٹھے تھے، وہیں پر اس مریض پر نزع کی کیفیت ہوئی اور آپ وہاں بیٹھ گئے. پھر اس کے قریب ایک چراغ جل رہا تھا، تھوڑی دیر کے بعد اس آدمی کا انتقال ہو گیا. چراغ جل رہا تھا، تھوڑی دیر میں اس آدمی کا انتقال ہو گیا. جیسے ہی انتقال ہوا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے وہ چراغ بجھا دیا. دوسرے لوگوں نے کہا حضرت آپ نے یہ چراغ، یہ لیمپ کیوں بجھا دیا، حالانکہ ابھی تو روشنی کی ضرورت ہے. انہوں نے فرمایا کہ جب یہ شخص زندہ تھا یہ چراغ اس کی ملکیت میں تھا، یہ اس کا مالک تھا، لیکن جیسے ہی اس کا انتقال ہوا یہ چراغ اس کے وارثوں کی ملکیت میں چلا گیا ہے. تو اب ورثہ کی اجازت کے بغیر اس کا استعمال کرنا ہمارے لیے جائز نہیں، اس لیے میں نے یہ چراغ بجھا دیا. بھائی میت کے باعث نہیں، جوتے کسی کو دے دیے، کپڑے کسی کو دے دیے، یہ لے جاؤ پانچ روپے کی چیز ہے، توا کسی کو دے دیا، برتن کہیں بانٹ دیے، فقیر کو دے دو، ایسا کچھ نہیں ہے. ایک پیسے کی چیز ہو یا چار لاکھ کی چیز ہو، وہ سب جمع ہو کر یہ اس قاعدے سے تقسیم ہوں گی. جو ورثہ ہیں وہ جمع ہو کے ان کو دی جائے گی. इसकी तफसील उलमा कराम से पूछी जाए, और अगर यहाँ पर किसी को सवाल हो तो मस्जिद में पूछा जाए। इस पर आइंदा भी कुछ चीज़ें पढ़ी जाएंगी, ये एक नशिस्त की चीज़ नहीं है, बहुत अहम मामला है कि हम जो है अपने विरासत का इंतज़ाम करें। इंशाल्लाह एक दो बातें और पढ़कर कुछ रिमाइंडर, फिर दुआ होगी। अल्लाह ताला आप सबको जो है बैठने की तौफीक अता फरमाए। बात यह है कि आदमी जो है वो हरीस है, और जिस चीज़ में जान माल वक्त लगता है उसकी कदर होती है, और जिस चीज़ में जान माल वक्त ना लगे मुफ्त का मिल जाए तो उसकी कदर नहीं होती। एक आदमी को देखा गया कि एक बहुत उम्दा कीमती शाल से अपने बहुत पुराने फटे पुराने जूते को पोंछ रहा है, तो उससे पूछा गया कि भाई ये शाल इतनी कीमती है, सैकड़ों रुपए की, जूता तुम्हारा 5 रुपए का है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? उसने कहा कि ये शाल जो है वो मुझे मुफ्त में वर्षे में कहीं से मिली है, और जूता मेरा अपना खरीदा हुआ है, जूता अपना खरीदा हुआ है, उसके दाम लगे। तो भाई जिस चीज में दाम लगते हैं उसकी कदर आदमी को। एक बकील आदमी जो है वो एक कुत्ता लिए चला जा रहा था, और उसके सर पर रोटियों का एक टोकरा था। सर पर रोटियों का टोकरा लेकर हाथ में कुत्ता लेके चला जा रहा है, रोता हुआ जा रहा है कि मेरा कुत्ता भूखा है। लोगों ने कहा भाई आपके सर पर रोटियां हैं, कुत्ते को खिला दो। वो आदमी इतना बकील कहता है कि कुत्ता मुफ्त का है, रोटियों के दाम लगे। इसका जो अगला हिस्सा है वो आंखों देखा वाकया है, और दुनिया में बाज ऐसी जगह पे अभी भी होता है। ये गर्मी की दोपहर है और चिलचिलाती हुई धूप है, और लोग जो है वो छोटी छोटी चिड़ियों को प्यासा रख के, उनके यानी होंठ खुले हुए हैं, मुंह से बेचारे प्यास से तड़प रहे हैं परिंदे, और उनको पिंजरे में लेके खड़े हैं। जब गाड़ियां रुकती हैं तो शीशे के पास आके कहते हैं कि ये खरीद लो, इसको आजाद करा दो। तो लोग पूछते हैं कि भाई तुम क्यों लिए खड़े हो, तुम ही खोल दो इसका दरवाजा, तुम ही आजाद कर दो। तो वो कहते हैं हमारे दाम लगे हैं, आप देंगे तब आजाद। ये जो है अभी भी बहुत ऐसी जो है इस किस्म के वाकयात हैं कि मुफ्त की चीज की आदमी कदर नहीं करता, जिसके दाम लगे हैं तो उसको फिर छोड़ने पर राजी नहीं। हमारा ये हाल होना चाहिए कि दीन की कदर करना चाहिए, और घर वालों की कदर करना चाहिए, और सोचना चाहिए कि भाई ऐसे घर वाले हम चराग लेके भी ढूंढते तो नहीं मिलते, अल्लाहुम्म लक अलहम्द लक। बड़ों को सोचना चाहिए कि ऐसे बहू और दामाद हम चराग लेके भी ढूंढते तो नहीं मिलते, अल्लाहुम्म लक अलहम्द लक। और छोटों को सोचना चाहिए कि ऐसे सास ससुर जो है, जैसे हमारे अम्मा अब्बा जैसे मेहरबान, हम चराग लेके भी ढूंढते तो नहीं मिलते, अल्लाहुम्म लक अलहम्द लक। ऐसी मस्जिद, ऐसे मोहल्ले, ऐसे पड़ोसी हम चिराग लेके भी ढूंढते हैं तो दुनिया में कहीं नहीं मिलते, अल्लाहुम्म लक अलहम्दुलिल्लाह। भाई कदर करनी चाहिए चीज़ों की, उससे जो है अल्लाह पाक नेमत को बढ़ा देते हैं, अल्लाह पाक नेमतों को बढ़ा देते हैं। इस तरह से जो है हमें नेकियों की रग़बत और गुनाहों से बचने के लिए हिम्मत की ज़रूरत है। ये एक मुस्तक़िल मज़मून है, यह आइंदा दफ़ा बयान किया जाएगा, लेकिन आदमी को हिम्मत करनी पड़ेगी। यानी हिम्मत से काम लेके आदमी इतना काम कर लेता है कि होता क्या है कि गर्मी है, नींद नहीं पूरी हुई, लेकिन गिरता पड़ता सुबह किसी तरह से लटकता हुआ दफ्तर पहुंच जाता है। एक चौराहे पे गाड़ी वो सिग्नल पे बाल झाड़ रहा है, दूसरे चौराहे पे रुकी तो एक बन खाया उसने, तीसरे चौराहे पे रुकी तो उसने कुछ एक कॉफी पिया, और किसी तरीके से दफ्तर पहुंच गया। हिम्मत की बात है। हिंदुस्तान से मौलाना आखिल साहब दामद बरकातहू, अल्लाह ताला उनकी दर्जात बुलंद फरमाए, इंतकाल हो गया। सब हैदराबाद में बहुत मशहूर वाइज मुकर्रर खतीब थे, कितने लोगों ने, कितने लोग उनके ज़रिए से इस्लाम में दाखिल हुए। हज़रत यहाँ अमेरिका तशरीफ लाए तो उन्होंने एक आदमी को देखा कि दोपहर के वक्त में खाने के वक्त एक ककड़ी हाथ में लेके भागा जा रहा है, बहुत यानी सूट बूट पहना हुआ और बहुत अच्छा मस्जिद, एक ककड़ी लेकर भागा जा रहा है। उन्होंने पूछा कि भाई क्या है, तो वो कहने लगा कि मेरा लंच है, दोपहर का खाना है। हजरत ने फरमाया कि अरे भाई तुमको ये इंडिया में नहीं मिलता था, यहाँ क्यों आया? तो भाई बात ये है कि आदमी हिम्मत से काम ले, हिम्मत से काम लेके अल्लाह की मोहब्बत में जम जाइए, हिम्मत से काम लेकर फजर की नमाज को उठिए, हिम्मत से काम लेके बाजार और सड़कों पर नामहरमों से नज़र बचाइए, हिम्मत से काम लेके जबान को गीबत से, गुस्से से, झूठ से बचाइए, और हिम्मत से काम लेके दिल को हसद से, जलन से, गुनाह के ख्यालात से पाक कीजिए। एक साहब ने शेख को खत लिखा कि हजरत मेरी हिम्मत नहीं होती बदनजरी छोड़ने को, बाहर जब निकलता हूँ इधर उधर नजर पड़ती है, बचा नहीं पाता, हिम्मत नहीं होती कि मैं जब निकलता हूँ तो इधर उधर नजर पड़ती है। तो शेख ने जो है ऐसा मजमून लिखा कि बताओ अगर तुम्हें यह मालूम हो, जिस वक्त तुम बदनजरी कर रहे हो, इधर उधर नजर डाल रहे हो ना महरूमों पर, अगर तुम्हें यह मालूम हो जाए कि तुम्हारे अब्बा जूता लेके तुम्हारे सर पर खड़े हैं तो हिम्मत हो जाएगी नजर बचाने की? हाँ हो जाएगी। या अगर ये मालूम हो जाए कि शेख तुम्हें ऊपर खिड़की से देख रहे हैं कि अरे इतना नेक आदमी ऐसा कर रहा है बाजार में, जब शेख देख रहे हो उस खिड़की से तो तुम्हें हिम्मत हो जाएगी नजर बचाने की? बोले हाँ हो जाएगी। तो कहने लगे कि अब्बा से डरता है लेकिन रब्बा से नहीं डरता, और शेख से डर रहा है लेकिन शेख के खालिक से नहीं डरता कि वो तो हर वक्त देख रहा है, वो तो हर वक्त देख रहा है। भाई हिम्मत से काम होंगे जितने, यानी गुनाह से बचना है और नेकी से, इसे लाहौल वलकुवत इल्ला बिल्ला उस पढ़ा जाता है ताकि जो है उसकी हिम्मत हो जाए। बड़ी उम्र के बुजुर्ग से पूछा गया कि आपने 50-60 साल दीन की मेहनत की, पूरे दुनिया में दीन फैलाया, अब आप बुजुर्ग हो गए, आँख आपके बाल सफेद हो गए, अब क्यों इतनी मेहनत करते हैं, पूरी दुनिया में जाते हैं, इधर उधर जा रहे हैं, दौड़ रहे हैं, अब आप आराम कीजिए, आप तो करोड़ों लाखों अरबों कमा चुके। तो वो कहने लगे, फरमाने लगे कि रेस का घोड़ा जब आखिरी लाइन के करीब पहुंचता है तो थोड़ा सा और तेज दौड़ता है, बस आखिरी छलांग है, उसके बाद तो आराम है। ये सारे जो है अहले हिम्मत के किस्से, अहले अल्लाह बुजुर्ग के यानी चीज़ें पढ़ी जाएं, बच्चों को सुनाई जाएं, तो दीन पे आदमी को तकवीत होगी। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। हमारी ज़िंदगी का खुलासा जो है वो ये है कि अल्लाह ने बहुत नेमतें दी मगर हमसे जो है ठीक से अमल नहीं हुआ, बहुत वक्त मिला लेकिन हमने इधर उधर ज़ाया कर दिए, हज़ारों लाखों मिनट हमने ज़ाया कर दिए, और अब जो है जो ज़िंदगी बची है उसका क्या तरीक़ा है कि जो हमारा माजी है जो गुजर गया है उसको तौबा करके हम साफ़ कर लें, और आज के दिन हम खूब नियतें करके और अच्छे अमल को दौड़ें, और मुस्तकबिल के लिए खूब अच्छे अच्छे इरादे करें, और उम्मत की खैरख्वाही हो, मेरे घर वाले, ख़ानदान, मोहल्ला, शहर, मुल्क, दुनिया, किस तरह से जो है सारे जो है लोग अल्लाह के महबूब बन जाएं, जन्नत में जाने वाले बन जाएं। ये एक हदीस शरीफ का मफहूम है, मिशकात शरीफ की हदीस है कि जो बंदा दूसरों को नेक अमल के लिए रहनुमाई करे उस बताने वाले को भी करने वाले के बराबर सवाब है। मन दल्ला अला खैरिन फलहू मिस्लु अज्र फाइलिही, बताने वाले को भी करने वाले के बराबर सवाब मिलता है। तो हमें कोई दीन की बात मिले उसको दोहराएं, अपने घर वालों को, खानदान को, गांव वालों को, बुजुर्गों को हम सुनाएं, बार बार दोहराएं अच्छी बातें, किसी तरीके से लोग अल्लाह का शौक़ पैदा हो, उनको दीन का शौक़ पैदा हो, हमारे लिए सदका जारिया हो जाएगा। मिशकात शरीफ की अगली हदीस का मफहूम है, फरमाया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि सखावत में सबसे आला ऊँचे अल्लाह हैं, फिर मेरा दर्जा है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, मेरे बाद उस आदमी का दर्जा है जिसने हिदायत का इल्म हासिल किया फिर उसको फैलाने और दूसरों को पहुंचाने की कोशिश की, ऐसा आदमी क़यामत में सरदार और हाकिम बनकर आएगा, या ये फरमाया कि ऐसा आदमी अकेला एक उम्मत बनकर आएगा। तो दीन की जो भी बात मालूम हो, एक आयत भी मालूम हो, उसको दूसरों तक पहुंचाना चाहिए, कायनात का एक एक ज़र्रा पीछे रह जाएगा और इंसान की एक एक बात और अमल उठाकर महफूज कर लिया जाएगा। जब आदमी मकसद ज़िंदगी पहचान लेता है तो एक आम सा आदमी हज़ारों लाखों लोगों की हिदायत का ज़रिया बन जाता है। आपके दिल में अल्लाह ने हीरे, मोती, सोना, जवाहरात, कीमती चीज़ें छुपाई हैं, अगर आप उनको तलाश करें, सही इस्तेमाल करें, तो आप अपने घर, ख़ानदानों और शहरों की हिदायत का ज़रिया बनेंगे। अल्लाह ताला हम सबको जो है ऐसा बना दे, हम सबको जो है तौफीक अता फरमा दे। जन्नत की मिट्टी बहुत खुशबूदार और पाकीज़ा है, जन्नत में लोग दाखिल होंगे तो सुबह का सुहाना वक्त होगा, हल्की हल्की रोशनी जब बढ़ती रहती है सुबह, इतना अच्छा मौसम होता है, वैसा जन्नत में समा होगा, न सर्दी न गर्मी, बेहतरीन मौसम। जन्नती चाहेंगे तो वहाँ के बागों में तफरी करेंगे, दरख्तों में झूलेंगे, फलों की शाखें नीची हो जाएंगी, जो चाहे फल तोड़ लीजिए, जब चाहे जन्नत के चश्मों में, नहरों में, पहाड़ों में तफरी करे, जन्नत की हवाओं में उड़े, सारी दुनिया के अरबों इंसानों की खुशियाँ, लज्जतें, राहतें, आयश व आराम एक जगह जमा कर लीजिए, ये सब मिलकर एक जन्नती मोमिन या मोमिना की खुशी और आयश व आराम के बराबर नहीं हो सकता। जो आदमी दुनिया से दिल लगाएगा एक दिन दुनिया छोड़कर जाना है, जो आदमी अल्लाह से दिल लगाएगा जन्नत के शौक में होगा एक दिन वहाँ पहुँच जाएगा। اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس کے اعلیٰ درجات عطا فرمائے. اب دعا کی جائے گی انشاءاللہ. دعا کے درمیان جب خاموشی ہو تو ہر ایک اپنی اپنی دعائیں بھی مانگ لیں. دعا کے دوران جو ہے قبلہ رخ اور ہاتھ اٹھا کے عاجزی سے دعا کرنا چاہیے, اور دعا سے پہلے نیک اعمال کرنا, اور یہ بھی بہت ثابت ہے. انبیاء کے وسیلے سے, اولیاء صدیقین, مشائخ کے طفیل سے بھی دعا مانگی جا سکتی ہے. تو ہر ایک کے لیے, اپنے لیے, امت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یا اللہ, یا رحمان, یا کریم, یا ذو الجلال والاکرام, یا حی یا قیوم, برحمتک نستغیث. یا اللہ, امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مغفرت فرمائیے. یا اللہ, امت کو بخش دیجیے. یا اللہ, امت کی غلطیوں کو معاف فرمائیے. یا اللہ, پوری امت میں جتنے لوگ بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عطا فرمائیے. یا اللہ, امت میں جو لوگ تنگ دست ہیں, مقروض ہیں, بے روزگار ہیں, ان کو آسان رزق عطا فرمائیے, تنگی سے نجات عطا فرمائیے. جو لوگ بچے بڑے علم دین سیکھ رہے ہیں, اللہ ان کو نفع دینے والا علم, برکتیں عطا فرمائیے. یا اللہ, امت کو خوف سے, ڈر سے, دشمنوں سے امن عطا فرمائیے. یا اللہ, امت کی پریشانیوں کو خوشی سے بدل دیجیے, امت کے غم کو خوشی سے بدل دیجیے. یا اللہ, امت کی بے عزتی کو عزت سے بدل دیجیے. یا اللہ, امت کی ہدایت کی ہوائیں چلا دیجیے. یا اللہ, امت میں جتنے خیر کے کام ہو رہے ہیں ان سب کو بڑھا دیجیے. یا اللہ, برکتیں عطا فرمائیے. یا اللہ, جتنے گناہ کے کام ہو رہے ہیں ان سب کو ختم فرمائیے. یا اللہ, جتنے بچیاں ہیں جن کے رشتے نہیں آ رہے, یا اللہ ان کے لیے نیک صالح رشتے عطا فرمائیے. یا اللہ, جو بے اولاد ہیں ان کو پاکیزہ اولاد عطا فرمائیے. یا اللہ, جن کی اولاد ہے ان سب کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے. یا اللہ, ہر گھر میں جو ہے ذکر تلاوت اور جو ہے سنتوں کا ماحول عطا فرمائیے. یا اللہ, یا رحمان, یا کریم, یا ذل جلال والاکرام, یا حی یا قیوم. یا اللہ, ہمارے اندر جو ہے روحانی بیماریاں ہیں, ہمارے اندر دلوں کی گندگیاں ہیں, یا اللہ, ہم ان سب سے توبہ کرتے ہیں. یا اللہ, حسد, جلن سے, عجب اور کبر سے توبہ کرتے ہیں. یا اللہ, نام و نمود سے, ریاکاری سے توبہ کرتے ہیں. یا اللہ, نفس کی خواہشات کے حد سے نکل جانے پر توبہ کرتے ہیں. یا اللہ, ہماری نیکیاں ضائع ہونے سے بچا لیجیے. یا اللہ, ہماری توبہ بار بار ٹوٹتی ہے. یا اللہ, افسوس, ہمیں لوگوں سے حیا آئی مگر آپ سے حیا نہ کی. یا اللہ, آپ ہر وقت دیکھنے والے ہیں, سننے والے ہیں. یا اللہ, ہم آپ سے کہاں چھپ سکتے ہیں؟ نہ مکان, نہ کوئی اندھیرا, نہ کوئی تدبیر آپ سے چھپا سکتی ہے. یا اللہ, پھر بھی آپ نے پردہ فاش نہ کیا, بندوں میں عزت سے رکھا. یا اللہ, صرف آپ کا کرم ہے. یا اللہ, ہماری کامل توبہ قبول فرمائیے. یا اللہ, آخری سانس تک جتنے گناہ ہو چکے ہوں گے سب بخش دیجیے. یا اللہ, اول, آخر, پرانے, نئے, بھول کر, غلطی سے, سب بخش دیجیے. یا اللہ, آسان حساب دیجیے. یا اللہ, نام اعمال سے برائیاں مٹا دیجیے. یا اللہ, ہر لمحے کا استغفار لکھوا دیجیے. یا اللہ, یا رحمان, یا کریم. یا اللہ, ہم سب کو اپنی ربا کے کاموں میں, نیک عمل میں دوڑنے کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ, دین کا کام کسی سے بھی لے سکتے ہیں مگر یا اللہ, ہمیں بھی موقع عطا فرمائیے. یا اللہ, ہمارے وقت میں برکت دیجیے. یا اللہ, ہمارے احوال درست فرما دیجیے. یا اللہ, نیکیوں کا شوق عطا فرمائیے. یا اللہ, ہر عمر میں سچائی, امانت اور اخلاص کا اعلیٰ درجہ عطا فرمائیے. یا اللہ, اونچی اونچی نیتیں عطا فرمائیے. یا اللہ, پہاڑوں کا سا ثواب عطا فرمائیے. یا اللہ, یا رحمان, یا کریم, یا ذل جلال والاکرام, یا قدیم الاحسان, یا دائم الخیر, یا کثیر المعروف, یا واسع المغفرہ, یا حی یا قیوم. یا اللہ, آپ سب کچھ دیکھنے والے, جاننے والے ہیں. یا اللہ, یا اللہ, ہم آپ سے سوال کرتے ہیں, مصیبت زدہ, محتاج, بے قرار, آفت زدہ کی طرح سوال کرتے ہیں. یا اللہ, دنیا آخرت کی ہر بھلائی, عافیت, ہدایت, مغفرت, اونچے درجات عطا فرمائیے. یا اللہ, بزرگی والے, عظمت والے, آسمان و زمین کے نور ہیں. یا اللہ, بے چینوں کو چین دینے والے ہیں. یا اللہ, آپ دعا قبول فرمانے والے ہیں. یا الہ العالمین, یا ارحم الراحمین. یا اللہ, آپ کے سامنے ہر حاجت پیش کی جاتی ہے. یا اللہ, حاضرین حاضرات, ہمارے بھائیوں بہنوں کی دل میں جتنی جتنی حاجات ہیں, یا اللہ, ان سب کو پورا فرما دیجیے. یا اللہ, یا رحمان, یا کریم, یا ذل جلال والاکرام. یا اللہ, ہم آپ سے مانگتے ہیں ہمیشہ رہنے والا ایمان. یا اللہ, ہمیں خشوع کرنے والا دل دے دیجیے. یا اللہ, دین پر, صراط مستقیم پر رکھ دیجیے. یا اللہ, ہر مصیبت اور بلا سے امن دیجیے. या अल्लाह आपकी जितनी रहमतें बरकतें उतरती हैं या अल्लाह रात के आखिरी पहर में उतरती हैं, रमज़ान शरीफ में उतरती हैं, शबे बारात में उतरती हैं, हज के मौके पर उतरती हैं या अल्लाह जुमे के दिन उतरती हैं, काबा शरीफ पर उतरती हैं, या अल्लाह आपकी जितनी रहमतें बरकतें उतरती हैं या अल्लाह हम उसमें से किसी के भी काबिल नहीं हैं, या अल्लाह आप करीम हैं, हम मोहताज हैं, या अल्लाह हमारी मोहताजी पर नज़र फरमाइए, हमें वो सब नेमतें अता फरमा दीजिए, या अल्लाह हयात तय्यबा हमारे घरों में बरकत, बच्चों में, काम में बरकत अता फरमाइए, या अल्लाह हर वक्त का जिक्र शुक्र अच्छी नीयतें दुआ अता फरमाइए, या अल्लाह तमाम बुरे ख्यालात वसवसे अंदेशे बुरी बातें शैतान की चीज़ें हमारे दिल से दूर फरमाइए, या अल्लाह जितने भाइयों बहनों ने या अल्लाह इसमें हिस्सा लिया है और दूसरों को भी इसकी तरगीब दी है, या अल्लाह हम सब के दर्जात बुलंद फरमाइए, उनको बरकतें अता फरमाइए, या अल्लाह हम सबको मुस्तजाब दावात बना दीजिए, या अल्लाह हमारी दुआएं कबूल फरमा दीजिए, या अल्लाह सब सबको काबा शरीफ की ज़्यारत अता फरमाइए, रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम वतुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम, اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح متقبل مبرور برحمتك يا عزيز يا غفور ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.